بسم الله الرحيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره من هو الجمود ولا يخدي الليطاء والجود اس كل موت منتقص سواه وكل مانع مزموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز اليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكام والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجه
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني الشر والأدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صلوات محمد عليه محمد بعد.
اللهم صل على
سورہ مبارک والفجر. علماء تفسیر نے، علماء تفسیر شیعہ نے اس سورہ کو سورہ حسین کے نام سے یاد کیا ہے، اور اسپیسیفکلی اس کی آخری تین آیات جن میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایتھ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو وہ آخری تین آیات کی طرف سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار اور ایک ٹکڑوں کی صورت میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پہنچیں گے. لیکن ہم نے کل یہاں تک اپنی بات کو مکمل کیا تھا. حل فی ذالک قسم للذی حجر، عقل مند کے واسطے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے کے واسطے. اور جو شخص ذی شعور ہے، ذی شعور سے مراد میرے اندر اور ایک جانور کے اندر فرق کیا ہے؟ صرف ایک شعور کا فرق ہے. اچھا، ہر شعور کے اعتبار سے جانور بھی شعور لیس نہیں ہے. ایک بلی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے تو وہ رک جاتی ہے، ایک کبوتر کو بھی پتہ چل جاتا ہے سامنے دیوار آ رہی ہے تو وہ بریک دے دیتا ہے، ایک جانور بھی خطرات محسوس کر لیتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں روایات میں اور علماء کے واقعات کے اندر، بعض اوقات بعض چیزوں کو جانور انسانوں سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں، یعنی بعض سینسز ان کی میرے اور آپ سے زیادہ ہیں. آپ نے خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ کا وہ واقعہ یقیناً سنا ہوگا. سفر کر رہے تھے، دوران سفر ایک دیہات سے گزر ہوا. اب اس زمانے میں جب کسی ٹاؤن سے گزر ہوتا تھا، ہوٹلز نہیں تھے، مسافر خانے نہیں تھے، مختلف ایسی جگہیں نہیں تھیں جہاں اکوموڈیشن کا کوئی سلسلہ ہوتا. لوگ جا کر کہتے تھے بھائی ہم عالم ہیں، یا مسجد میں سو جائیں یا کوئی مومن بندہ خدا اپنے گھر لے جائے. اور جب ٹاؤن سے گزر رہے تھے، ایک کسان کو پتا چلا کہ عالم ہیں، انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، کچھ رات رکیں، اور آپ کے وجود کی برکت سے، آپ کے قدموں کی برکت سے خدا میرے رزق و روزی میں اور میری اور بہت ساری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. آغا نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا. اب جب رات کا کھانا وانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس بندے خدا نے کہا کہ آغا کہاں بستر بچھاؤں؟ کہا صحن میں بچھا دو. کہا اچھا، لیکن صحن میں رات کو بارش ہو جائے گی. آغا نے کہا دیکھو میں علم نجوم کا ماہر ہوں، آسمان پر، ستاروں پر، چاند پر سارے پلس مائنس کر کے میں بتا رہا ہوں رات کو بارش نہیں ہوگی. میں تم سے کہتا ہوں میرا بستر صحن میں بچھا دو. بےچارہ کسان ضد پر اڑ گیا کہ نہیں جی مولوی صاحب رات کو بارش ہوگی. مولانا صاحب نے کہا نہیں ہوگی. اب اگر سامنے کوئی بڑا عالم ہو اور ادھر بےچارے ایک دیہاتی کسان ہو، اور بس دیہاتیاں ہٹا دیے، کہا مولوی صاحب بچھا دیتا ہوں بستر، دل میں آئے ہوں گی جب رات میں منہ پہ قطرے پڑیں گے نا تو آپ گوشت نکالنے لگ جائیں گے. مولانا صاحب کے بستر بچھا دیا رات کو صحن میں، اور جیسے ہی صحن میں بستر بچھایا، مڈ نائٹ تھی، مولانا صاحب کی بڑی میٹھی سی نیند اسٹارٹ ہوئی تھی، ٹپ ٹپ टप बारिश के कतरे चेहरे पर गिरने लग गए। मौलाना ने उठे, शोर शराबा किया, बिस्तरा उठाया, अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह उठे तो कहा कि मैं माहिर सैयारात हूँ, मुसलमान माहिर नजूम हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मेरा इल्म कहता था रात को बारिश नहीं होगी, और तुम जो कि एक जाहिल किसान बेचारा खेतों में काम करने वाले हो, तुमने प्रिडिक्शन कर दी कि बारिश होगी। और मजे की बात है, मिडनाइट में तुम्हारी बात मुझ माहिर फलकियात की बात पर ज्यादा सही साबित हुई। तुमने कैसे प्रिडिक्शन की थी कि बारिश होगी? कहा मौलाना साहब मैंने नहीं प्रिडिक्ट किया था, मेरे कुत्ते की प्रिडिक्शन थी। अब मौलाना साहब बहुत ज्यादा शौक, देखिए हम अपने आप को इंसानों के बराबर नहीं समझते, हम अपने आप को इंसानों के बराबर नहीं समझते, हम अपने आप को सारे इंसानों से अफजल समझते हैं। यहाँ तो सामने इंसान भी नहीं है, कुत्ता है। कहा हाउ पॉसिबल कुत्ते ने प्रिडिक्शन की हो? कहा बास प्रिडिक्शन जुबान से की जाती है, बास प्रिडिक्शन करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब मौलाना साहब ने कहा कुत्ते की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? कहा मौलाना साहब ये सालों से मेरे पास आ रहा है, रखवाली कर रहा है, लेकिन कमाल ये कि जिस रात बारिश होने लगती है तो ये अपनी खोली के अंदर सोता है। आपने देखेंगे पपी हाउस। कहा जब रात को, जिस रात को बारिश होने लगती है ये अपनी खोली के अंदर सोता है, जिस रात को सूरज और मतला आसमान और मतला साफ होता है ये बाहर सहन में सोता है। गुज़िश्ता रात जब बिस्तर बिछाने की बात, मैंने अपने कुत्ते को देखा, वो अंदर जा रहा था, आपका इल्म कह रहा था बाहर बिस्तर बिछा दो। अब मैं उस बेजुबान की बात को तो इनकार कर सकता था, आप आलिम फाजिल कैसे आपकी बात को इनकार करता। मैंने बिस्तर बिछा दिया और बिस्तर बिछाने का नतीजा क्या निकला? आप भी गीले हो गए और आपके साथ साथ पूरा बोरिया बिस्तर भी गीला हो गया। तो बाज़ हिस्सियात जानवरों की मुझसे और आपसे ज्यादा तेज है। और एक रिसेंटली वाकये की तरफ टच करके आगे चली जाऊं, ये जो सुनामी आया था, अब मुझे साल तो बिल्कुल याद नहीं है सुनामी का। एक दफा मैंने मस्जिद में कहते बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, सोच में पड़ के कौन से साल में शहीद हुई थी। इसीलिए मैं आवाम से कभी सवाल नहीं करती, जब हम भूल सकते हैं तो वो तो ज्यादा भूलने का हक रखते ना। जिस साल सुनामी आया 11 रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत को रिकॉर्ड किया गया। मजे की बात है, मैंने सोशल मीडिया पर क्लिप्स देखे, आपने भी यकीनन देखे होंगे, इंसानों की फूली हुई लाशें ऐसे पानी पर तैर रही है जैसे खिसो खाशाक होता है। जैसे कभी आप अपने सेन के अंदर ढेर सारा पानी बाल्टी के जरिए बहाएं तो ऊपर छोटे छोटे तिनके तैर रहे होते ना, छोटा छोटा कचरा, टिश्यू पेपर, थैलियां और च्यूंगम के रैपर्स वगैरह, इसी तरह से इंसानों की लाशें पानी पर तैर रही थी। पानी की एक पूरी दीवार थी जिसने आकर थाईलैंड, बैंकॉक और बहुत सारे ममालिक के साहिल को तबाह बर्बाद कर दिया। और बहुत सो को कुरान की सिर्फ एक आयत याद आ रही थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ाला इंसान अखबारहा, कयामत के दिन ये जमीन अपनी गवाहियों को निकाल देगी। लेकिन इन फूले हुए लाशों के दरमियान कमाल क्या है, थाईलैंड में रात को एक सर्कस के अंदर हाथियों का कोई प्रोग्राम था। थाईलैंड में जिस रात सुनामी आया हाथियों का एक प्रोग्राम था, सुनामी आने से जस्ट फ्यू मिनट्स पहले हाथी रस्से तोड़ाकर भाग गए। हाथियों को पता चल गया सुनामी आने वाला है, और वो इंसान जो माहिर फलकियात बनता है, माहिर नजूम बनता है और अपने आप को खुदा की बेहतरीन मखलूक समझता है, उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं आई कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है। तो बहरहाल हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा जी शऊर समझते हैं। और कुरान के तहत अल्फीजाल का कसम लीजिए है, अकलमंद के वास्ते तो बहुत बड़ी कसम है ना, जो कसम खाई जा रही है खाने वाली रब्बुल इज्जत की जात, और जिस किताब के अंदर खा रहा है परवरदिगार सूरह मुबारक हश्र में फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरायतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तुम देखते फट जाए, हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तुम देखते फट जाता है, कलबे मोहम्मद नहीं फटा। और कमाल तो यह है कि वारिसाने कुरान ने कुरान को किस तरतीब के साथ हम तक पहुंचाया, किस कमाल के साथ हम तक पहुंचाया। इस कुरान के हवाले से अल्लाह ने दो प्रिडिक्शन की थी, दोनों प्रिडिक्शंस को सच्चा साबित करके दिखाया। लेकिन एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, सुबह मुझे एहसास हुआ कि आप भी आंखों से ज्यादा अच्छी सलवात पढ़ सकते हैं। लेकिन सुबह मैंने कहा ना वार्म अप थे, आप एक नींद लेकर उठी हुई थी, इस वक्त तो आपका मूड नहीं है सलवात पढ़ने का, इसीलिए आप ऐसी और दोनों चैलेंजेस कुरान के एतबार से बहुत अजीब है, दोनों चैलेंजेस कुरान के एतबार से बड़े अजीब है। पहला चैलेंज पर परवरदिगार आलम कहता है लाहत भी हूँ वाला या वैसे नहीं अल्लाह की किताबें होगी। देखो हमने कोई खुशकुतर ऐसा रखा ही नहीं जिसको कुरान में मेंशन नहीं किया, हमने कोई खुशकुतर ऐसा नहीं रखा जिसे हमने कुरान में मेंशन नहीं किया। अच्छा परवरदिगार तो मेंशन नहीं किया, इसका मतलब हर चीज उन्होंने कुरान के अंदर दे दी, हमें क्यों नहीं मिलती? मेरा अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल की बारगाह में सवाल है, परवरदिगार मुझे क्यों नहीं मिलती? तू कहता है ला रब्बी वला याबसिन इल्ला फी किताब, हमने इसके अंदर मसलों का हल, हमने इसके अंदर मुश्किलात का के लिए सलूशन बहुत कुछ रख दिया। मौला का वो जो नहजुल बलागा में खुतबा कुरान के हवाले से कहा ये शफी है, शिफात करने वाला है, लेकिन परवरदिगार जिस तरह से कहता है ये कुरान शिफात करने वाला है, अहले बैत जिस तरह अनाउंस करते हैं कुरान शिफात करने वाला है, इसी के मुकाबले में मीज़ानुल हिकमत कंपाइल बाय आगे मोहम्मदी दिशहरी रिवायत है मासूम की रुब्बा कारिन, बहुत सारे कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ रहे होते हैं कुरान पे लानत भेज रहा होता है। और इसी के जेल में आ गए सैयद हाशिम रसूल महलाती ने शेख हदीस में एक इशारा भी किया, आगे हाशिम रसूल महलाती लिखते हैं कहा एक बंदा दुनिया से चला गया मर गया, अब औलाद कभी कभी क्या होता है हम दीन को पैसे से खरीदना चाहते हैं, हम कहते हैं हम बड़े वेल ऑफ हैं। मैंने एक जुमला एक दफा किसी आलिम के मुंह से मेंबर से सुना था, कहा जब हज पर लोगों से कुछ सिलेबस चेक हो जाता है आप कहते मौलाना आप बताए कितने बकरे बने, यानी आप शरीयत मोहम्मदी का मजाक उड़ा रहे हैं, कितने बकरे बने आपको बकरों की फिक्र है, कितने डॉलर्स बनेंगे? अच्छा $100 ऑलमोस्ट $100 के लगभग एक बकरा बनता है हज पे जो कफारे गर्दन पर आते हैं, हम तैयार हैं हम पे कर देंगे, तो तुमने हराम काम किया एहसास नहीं हुआ कहां आकर गुनाह कर रहे हो, एहसास नहीं हुआ खुदा के मेहमान बनकर उसकी मासियत कर रहे हो? लेकिन बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिसाल के तौर पर समझते हैं कि वो दीन को खरीद सकते हैं, और फिर जब ये परवरदिगार आलम ये एक सीक्वेंस चलाता है कि परवरदिगार ला रब्बी वला बिस्मिल्लाह की किताब में मुबीन, तूने कहा आपने कोई खुशकुतर ऐसा नहीं रखा जिसको कुरान में मेंशन नहीं किया, हम कुरान की बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाए और उनमें से एक जब तिलावत करते थे ठहरते नहीं थे, जब तिलावत करते थे ठहरते नहीं थे, एक बंदे खुदा बेचारा मर गया, औलाद ने सोचा मौलवी जिंदगी में तो अब्बा जी कुरान पढ़ने के इतने शौकीन नहीं थे, चलो एक शख्स को इन्होंने पेड़ बंदा लिया और उससे कहा तुम रोज जाओगे अब्बा की कब्र पर एक सिपारा एक रुकू दो रुकू जो भी एक फाइनल इतना पढ़ोगे इतना हम तुम्हें अमाउंट पे कर देंगे। पहले दिन वो गया कुरान थोड़ी देर पढ़ता रहा, दूसरे दिन तीसरे दिन अब्बा जान आगे ख्वाब में बड़े भेजे गए रोना धोना वावेला और आकर कहा ये तुमने किसे बिठाया इसे हटा दो, अभी हमने तो आपकी सहूलत के लिए ना कुरान पढ़ा जाएगा नूर हो जाएगा आपकी कब्र में। अजीजा ने मन अगर मेरे नेबर की कब्र में नूर की बारिश होगी तो मुमकिन है उसमें से मुझे कुछ भी नसीब में ना हो। बाप ने कहा जब कुरान पढ़ने के लिए कारी आता है मलाइका मेरे अजाब को बढ़ा देते हैं और कहते हैं कुरान जिंदगी में नहीं था, मलाइका जब आते हैं ये शख्स आता है तो मलाइका अजाब बढ़ा देते हैं कुरान जिंदगी में नहीं था, पढ़ा तुमने किस तरह से पढ़ा? और कुरान पढ़ते वक्त तो अल्लाह पाक मेरी सौ दफा तौबा, जो हमारी स्पीड होती है हम मजलिस फास्ट पढ़ते हैं 10 लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन बाद इन्हीं मजलिसों में यासीन इन्हीं मजलिसों में सूरह रहमान इन्हीं मजलिसों में सूरह मुल्क इन्हीं मजलिसों में हदीसे शरीफ किसा इन्हीं मजलिसों में ज़ियारत आशूरा फास्ट पढ़ी जा रही होती है, बाज अगर उन्हें तोड़ने वाला कोई नहीं होता, यानी हम पढ़ रहे हैं गलत कर रहे हैं वो गलत पढ़ रहा है उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन जब हम कुरान पढ़ रहे हैं बहरहाल इस कुरान में तदब्बुर करो कि अल्लाह मियां अल्लाह मुझे तौफीक दे हम सबको तौफीक दे, जब हम पढ़ते हैं वरतिल कुरान तरतीला ठहर कर समझ कर, मैंने उस दिन आपकी खिदमत में एक आयत अर्ज की थी ना, इंसान जब अटकता है अटक जाते हैं सुई अटक जाती है, अल्लाह मियां ऐसे कहा अच्छा उज़ैर के साथ ऐसा मामला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दूसरा मामला, लेकिन ये पहला चैलेंज है कुरान का ला रब्बी वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, दूसरा चैलेंज नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहू हाफिज़ून, देखो हमने इस किताब को नाजिल किया हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे हम इसे आखिर तक संभाल के रखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके हाथ में जो कुरान का खत है जो कुरान की तहरीर है जो कुरान की आयात है जो रोशनी है मुजस्सम हमारे हाथों में है, ये अलग बात है कि शायद हमने उस कुरान को इस एंगल से लिया ही नहीं, हम अपने दर्दों की दवा करते इस कुरान के जरिए। और फिर इस जुमले के बाद कि हल फी ज़ालिका कसम लिज़ी हिज्र अकलमंद के वास्ते बहुत बड़ी कसम है खुदा अज़्ज़ा वजल तूने कसम खा ली, तो कसम नहीं भी खाता तो हम कहते तो असदकुस सादिकीन है। हम दुनिया में खबर पर दो तरह का रिएक्शन दिखाते हैं, खबर समझते हैं न्यूज दो तरह का रिएक्शन दिखाते हैं, एक वक्त में मिसाल के तौर पर अब ये बहुत प्रैक्टिकल सी मिसाल है मुझे अंदाजा है आपको मजलिस भूल जाएगी मिसाल जान रही, एक वक्त में आपका 6-7 साल का बच्चा आकर कहता है फर्ज करें यहाँ से आपने पर्दे वर्दे गिरा दिए, सारा माहौल ऐसा बना दिया, बाहर से आके मामा मामा मामा, मिसाल के तौर पर बाहर आंधी चल रही है, आप शक में पड़ जाएंगी, डैम कंफर्म नहीं रहेंगी। बच्चा है, बच्चों का क्या, वो तो जरा सी हवा को भी आंधी बना देते हैं और दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देते हैं। अच्छा उठ कर देखूंगी, तुम सच कह रहे हो या सच नहीं कह रहे। अच्छा यही अगर आपकी वाला, अगर आपसे कि बेटा बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, उठो और अपनी चीजें गैलरी में से टेरेस पर से समेटना शुरू करो, कभी अपनी माँ को जरूरत करके कहेंगे अम्मी सबर करें जाकर देखूं बाहर आंधी चल रही है या नहीं चल रही। मुखबिरे सादिक खबर दे रहा है, वो रब्बुल इज्जत खबर दे रहा है, हबीबे इलाहल आलमीन खबर दे रहे हैं। हुज़ैमा जैसा ईमान चाहिए इंसान को, हुज़ैमा को जो शहादतें कहते थे और तारीख ने तफसीर ने हमारे हिस्टोरियंस ने हुज़ैमा को जो शहादतें कहने की सिर्फ एक सबब एक रीजन एक वजह एक इल्लत बयान की है, वो ये है कि अल्लाह के हबीब का किसी यहूदी के साथ बहस शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने तुम्हें ये अमाउंट दे दी है, उसने कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे नहीं दी, और इन दोनों की डील हुई थी घोड़े की खरीद और फरोख्त पर, जो तारीखों में सब तेजर से इख्तलाफ के साथ एक जगह मैंने पढ़ा घोड़े की जीन के हवाले से बहस चल रही थी। अब ये सामने वाला कह रहा है आपके पास गवाह है कि आपने मुझे पैसे दिए थे, अल्लाह के रसूल खामोश, पीछे मुड़कर देखा सहाबा सारे बैठे हुए, मैंने सुबह पढ़ा था ना कुल्लुम नुजूम सबके सब सच्चे हैं, मुड़कर देखा कहा कि तुम में से कोई गवाही देगा कि मैं सच्चा हूं, सारे साहबा ने सर झुका लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम में से कोई गवाही देगा मेरी फेवर में, सब ने सर झुका लिया, मैं उठकर खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कैसे गवाही देते हो खुज़ैमा, तुम तो थे नहीं, कैसे गवाही देते हो तुम तो थे नहीं, मिसाल के तौर पर मैं आके आपसे कहूं मेरे एक्स के साथ डील हुई और उसके बाद कहूं कि आप गवाही दें, तो आप कहेंगे मैं तो उस वक्त था ही नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा ही नहीं। कहा खुज़ैमा तुमने कैसे गवाही दी, खुज़ैमा ने पलटकर एक जुमला कह दिया साहबे पैगंबर से, और ये जुमला बड़ा ही प्यारा जुमला है। खुज़ैमा ने कहा कि ए अल्लाह के हबीब, आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने और इन साहब ने अल्लाह नहीं देखा, आपकी बात पर ईमान लाए, आपने कहा एक जन्नत है उसमें हूरे हैं उसमें महल है उसमें बागात है उसमें दूध और शहद की नहरें हैं, मैंने और कंपेनियंस ने जन्नत नहीं देखी थी, ईमान लाए। कहा हाँ है या रसूलल्लाह, आप कह रहे हो जन्नत है तो जन्नत है, या रसूलल्लाह फिर आपने जहन्नुम की बात की, जहन्नुम उसके शोले उसके सांप उसके बिच्छू उसके कुत्ते उसकी गाठियां उसकी आग के लपटे, या रसूलल्लाह हमने जहन्नुम नहीं देखी थी, आपकी बात पर ईमान लाए, हमने आपके कहने पर अल्लाह को मान लिया, आपके कहने पर मलाइका को मान लिया, आपके कहने पर जन्नत को मान लिया, आपके कहने पर जहन्नुम को मान लिया, ये तो एक घोड़े का मामला है या रसूलल्लाह, हमने तो आपके कहने पर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। ये जुमला खुज़ैमा के मुंह से निकला जब तक खुज़ैमा जिंदा थे, जो शहादतें कहलाते थे, खुज़ैमा तन्हा खड़े होते थे, दो अफराद की गवाही के बराबर उनकी गवाही को काउंट किया जाता था। इंसान ईमान लाता है अल्लाह पर, ईमान क्या है हमारा। अब एक छोटी सी मिसाल दूं और बहुत तेजी से आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं सोच रही थी तू भी मदद करना, हजरत सुलेमान बिन दाऊद के पास 50 बीवियां थी, आप सोचे मैं सोचे जिन पर 50 बीवियां थी, नंबर लगाए हुए थे टी शर्ट के पीछे, ना खिलाड़ियों के पीछे लिखा था 1 2 3 4 या रसूलल्लाह 50 बीवियां। अल्लामा जी सिलाई रहमान ने इसको हयातुल कुलूब में नकल किया वॉल्यूम नंबर 2 में, बल्कि वॉल्यूम नंबर 1 में जहां पैगंबरों का तस्करा किया। एक दिन आए थे अपने कंपेनियन से कहने लगे मेरे पास 50 बीवियां, मैं 50 के पास जाऊं 50 बच्चे होंगे, गए 50 के पास 49 क्या कुछ भी नहीं हुआ। कुरान कहते सूरह बकरा के वाक्य में अफराय तुम मा तुमनो अंतुम तखलुकूना व नहनु खालिकून, क्या तुम समझते तुम खल्क करते हो, ये हम हैं जो खल्क करते हैं। अच्छा 49 बीवियों का तो कुछ भी नहीं हुआ, खलास भाई फाड़ देना बबर का सफेद ब्लैक, वो जो आखिरी बची थी उसके यहाँ नाकिसुल खिलका बच्चा हुआ। बच्चों के लिए एक्सप्लेन करो नाकिसुल खिलका किसे कहते हैं, प्री मैच्योर बच्चा पैदा हुआ, गुलाम ने कनीज ने लाकर सुलेमान बिन दाऊद के हाथ पर प्री मैच्योर बच्चा रख दिया। जिब्राइल को आवाज ही कहा या फिर जिब्राइल नीचे आए, जिब्राइल आए अंबिया की मदद के लिए आया करते थे, अलबत्ता जिब्राइल खुद जब मदद की मोहताज होते थे तो मौला को आवाज देते थे, खुद हमेशा नबियों की मदद करते थे। आए जिब्राइल से कहा या फिर जिब्राइल ये क्या है, कहा जब आपने कहा मेरी 50 बीवी है, मैं 50 बीवियों के पास जाऊंगा, 50 बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे बड़े होंगे, वो घोड़ों पर बैठेंगे, मैं उनकी शानो शौकत देखूंगा, आपने इंशाल्लाह तो कहा ही नहीं था, इंशाल्लाह तो कहते अभी मैंने पहले इसी गेट वहां से इंशाल्लाह कह दिया। 3 या 4 मिनट में छोटा सा फर्क, ईमान कुरान भरा पड़ा है लफ्ज ईमान से, या अय्युल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह मियां हम डरने वाली शक्लें हैं, मैं कभी कभी शायद को पढ़ के सोचूं अल्लाह मियां हम डरने वाली शक्लें हैं, किसी कोने में बैठे मुसल्ला बिछाकर तौबा तौब कर रहे हो, अगर हम डरने वाले हो तो ऐसे अजीब हमारी हरकतें और अजीब हमारे नाम है अमल। लेकिन बहरहाल ईमान, ईमान किसे कहते हैं, ईमान बिज़ात है, ईमान बिसिफात नहीं है। एक छोटी सी मिसाल दूं, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई अलमीज़ान, ये भी मैंने वल फजर के लिए अलमीज़ान खोली हुई थी, उसके अंदर एक बहुत अजीब सी मिसाल देते हैं, अलबत्ता ये मिसाल उन्होंने अलमीज़ान की किसी दर्स में दी है दरमैज़र उस्ताद के नाम से, किताब का नाम ये दरमैज़र उस्ताद, हम उस्ताद के पास बैठे हमने तफसीर के दर्स में ये छोटे छोटे से पॉइंट्स लिए। कहा मोमिन का खुदा की जात पर ईमान है, उसकी सिफात पर ईमान नहीं है। एक मिसाल है छोटी सी दी और वो मिसाल इतनी डरावनी है, मैंने एक दफा कराची में मस्जिद में दे रही थी, उम्मत मेरे गले पड़ गई थी और मैं डरते हुए दे रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मियां इस इंशाल्लाह को 100 times मल्टीप्लाई मलाइका से करवा दे, आई होप कि आप उसे पॉजिटिवली लेंगे। कहा कि शिर्क क्या है और ईमान क्या है, अल्लामा तबातबाई की जो बड़ी प्यारी सी डाइल्यूट की हुई मिसाल है और मिसालों के जरिए बहुत देर तक इंसान के जरिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाज़ेह हो जाते हैं। आगा कहते हैं ज़ात पर ईमान है, सिफात पर ईमान नहीं है। मिसाल के तौर पर उसकी सिफात में से एक सिफत है खालिक, एक सिफत है रब, एक सिफत है राज़िक, रिस्क देने वाला। हमें यकीन, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपके ख्याल में रिस्क कौन देता है, अल्लाह या अल्लाह के बंदे? जब हमें बचपन में सिफाते सबूतियां सरबिया सिखाई गई थी ना, याद है कुछ पिछली 20 साल पुरानी, 22 साल पुरानी, 18 साल पुरानी, 14 साल पुरानी मेमोरी को रिकॉल करें, बचपन में एक चीज सिखाई गई थी सिफाते सबूतियां और सिफाते सरबिया के नाम से, वो ही है, वो कादिर है, वो ये है, वो है, वो राजिक है, अच्छा अल्लाह में तू राजिक है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। ये प्रैक्टिकल मिसाल दे रही हूँ और ये चीज आपने मुआशरे में पाई होगी, देखी होगी, खुद नहीं तो किसी और के मुंह से सुना होगा। एक आदमी है जिसके 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे बच्चे वो टाइनी टून साइज के, मर जाता है, जनाजे पर लोग कॉन्डोलेंस कम करते हैं और बच्चों का मातम ज्यादा करते हैं, हाय अल्लाह बेचारा चला गया, बच्चे बहुत ही छोटे हैं, अभी तो कमाने और खाने के लायक नहीं है, बच्चे बहुत छोटे। मेरी एक बड़ी पेटेंट सी मिसाल है, मैंने बारहा मेंबर से दी है, हम ये नहीं समझते खाने वाला गया है। हाथी मिताई सफर पे जा रहे थे, 15 तारीख का वाकया, जब जा रहे थे तो बेगम से ऐसे ही लाड़ से पूछा, बेगम कितने देर का आजूका, आजूका पता किसे कहते हैं, ग्रोसरी आइटम, देखे जरा मैं दोपहर में बजाय नैप लेने के मुसलसल अपनी डिक्शनरी खोल के बैठी हुई थी कि जल्द खाने के बच्चों को मैसेज कैसे आज संडे का डिनर कन्वे करूंगी, ग्रोसरी आइटम कितनी देर का दे जाऊं, दूध के पैकेट उस जमाने में होते नहीं थे, अलबत्ता खाए भैंसे बकरियां बनी रहती थी लोगों के सेनों में, लेकिन बेगम से पूछा कितनी देर की ग्रोसरी दे जाऊं। हातिम दाई की बीवी बड़ी चालाक किस्म की खातून थी, कहती जितनी देर की मेरी जिंदगी चाहिए, हातिम चुप कर गए, कहा तुम्हारी जिंदगी मेरे अख्तियार में नहीं है, शुक्र करें शोहरों के इख्तियार में नहीं है, शुक्र करें शोहरों के इख्तियार में नहीं है हमारी जिंदगियां, कहा जितनी मेरी जिंदगी तुम्हारे, जितनी जिंदगी चाहिए, हाथ ने पलट कर कह दिया, कहा जिंदगी मेरे इख्तियार में नहीं, कहा मेरा रिस्क भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, चले गए हातिम। अब हातिम का काम क्या है, डिलीवरी देना लोगों को, सोशल चैरिटी वर्क टाइप का करने वाला काम है ना, ताई हातिम में ताई सखी है, एक ज़ईफ़ा आई जो बेचारी मदद कर लेने के लिए आती थी, चंदा सदका खैरात कुछ एक्सरसाइज, अगर कहा बीबी से हातिम कहाँ गए हैं, कहा ट्रैकिंग पर गए हैं, कहा राशन पानी देकर गए हैं, जौजा ने उस ज़ईफ़ा से पलट कर कहा खाने वाला गया है, देने वाला भी यहीं पर बाकी है, वो रिस्क देने वाला है, लेकिन हम जनाजों पर ये भूल जाते हैं वो पालने वाला है, माए मर जाती है तो क्या कहते हैं, काश माँ ना मरती, ये एकाश ईमान का बदतरीन दुश्मन, ये लफ्ज एकाश, हाय छोटे छोटे बच्चों की माँ मर गई, उसकी खाला क्यों नहीं मरी, जिसकी यहाँ औलाद भी नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड भी है और 8 साल से बिस्तर पर भी है, आपके ख्याल में मुझे ईमेल टाइप करनी चाहिए, अल्लामिया को सेंड कर देनी चाहिए। अल्लामिया टाउन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेबोझ बन गए हैं मुआशरे पर, जिनके पैंपर्स बदलवाए जा रहे हैं, जो करवटे बदल रहे हैं, जो बिल्कुल होपलेस हो गया है। अल्लामिया सबको उठा ले, बच्चों वाली माओ को नहीं मारना। जब खुदा खासा किसी मोमिना का इंतकाल हो जाए, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर हम क्या कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में जनाजों पर, बेचारी माँ बच्चे तो रुल जाएंगे। और अल्लाह किसी को पालने पर आ जाए तो वो यतीम को नबी बनाना जानता है, वो यूसुफ को कुएं से निकालना जानता है, वो यूनुस को शिकम माहे से निजात देना जानता है, वो इस्राइल की जगह दुम्बा भेजना जानता है, वो इब्राहिम को किबरे सिन में बेटे के जिद होने से बचाना जानता है। अजीजा नेमन वो नूह के सफीने को निजात देना भी जानता है। और जो सैयदुल शहदा के दरवाजे से वाबस्ता है वो बेहतर जानते हैं कि हम सैयदुल शहदा के दामन से वाबस्ता है। आदम खुदा का नूर नहीं था हुसैन है, आदम शुआए दूर नहीं था हुसैन है, आदम खता से दूर नहीं था हुसैन है, आदम सही है साहिब इज्जो वकार है, लेकिन हुसैन दोष नबी के सवार है। इंसान चाहता हूँ मैं दुनिया के मुंतकिम सबरे खलील के तो सभी जाम ये तो गिन, और फिर सुकून शह में देख इम्तिहान के दिन, सब कुछ लुटा के भी मेरा मौला है मुतमईन। अकबर वो सो रहा है, ये असगर की कब्र है, शब्बीर चुप खड़े है, ये मीजान सब्र है। अजीजा ने मन रुकबे में नजी को वही शान चाहिए, अपनों को निजात का सामान चाहिए, कश्ती हो बाजबा होने के बाद चाहिए, कश्ती के तैरने को भी तूफान चाहिए, लेकिन ये मौजज़ा है शह मशरकैन का, खुशकी में तैरता है सफीना हुसैन का। हुसैन इन चीजों के मोहताज नहीं है, तो खुदाए हुसैन हाउ इट पॉसिबल खुदाए हुसैन मोहताज हो। बहुत सारे बच्चे माँ बाप के बगैर सही पल नहीं पाते, और बहुत सारे बच्चों को यतीमी में वो सिर्फ पाता नहीं निखार देता है। हमारा अकीदा ये है अजीजा ने मन, हम खुदा की जात पर भरोसा रखते हैं लेकिन सिफात पर भरोसा नहीं रखते। एक मिसाल मैंने रिस्क के एतबार से दी ना, एक मिसाल छोटी सी कुदरत के एतबार से दू और बहुत तेजी से आगे चली जाऊं, लेकिन वो
है तेरी
कुदरत के एतबार से हम खुदा को कादिर भी नहीं समझते। अब जब ये जुमला कहें ना बहुत जोर समझ के बोल रहे हो, जज्बाती जुमले बोले का मेरा मिजाज भी नहीं है। आपने तो मुझे दो साल बाद देखा मेरे उस पेटेंट मजलूम मजमे से सुने, जिन्हें मैं अक्सर और बेशतर बेचारों को पता नहीं मजलिसों के नाम पर क्या क्या करती हूँ उनके साथ, लेकिन जब ये जुमला कह रही हूँ तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, हम खुदा की कुदरत में शक करते हैं। अल्लामा तबातबाई का वही जुमला जिसके लिए मैंने इतनी तमहीदी बातें बनाई, जिन्हें आगा ने अलमीजान में भी बयान किया, कुदरत अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत को चैलेंज भी करते हैं कभी कभी, मैं देखती हूँ तू कैसे सुखी रहती है। हाय हो सकता है खुदा वो मुझे उस दिन के लिए जिंदा ही ना रखे जिस दिन उसका सुख हो। जो बोलते हैं बड़े बड़े बोला मैंने कहा ना गोदी में आती, मैं कहती खुश नसीब है जिसका बोल गोदी में गिर जाता है। वो अमजन उम्र वैदा नहीं है, कुरान कहते किसी किसी को मोहलत देते हैं, आपके ख्याल में सद्दाम ने ऐसी मोहलतें कम दी होंगी, फौरन उसे किसी की आग लग गई। खुश नसीब हुआ जिन्हें पहले झटके पे आग लग जाती है, खुदा डरा देता है दोबारा इतना बड़ा बोल नहीं बोलना, लेकिन हम बोलते हैं। मैंने किसी की जुबान से एक अजीब सा जुमला सुना था, आपकी बेटी के सर पर बाप भाई नहीं थे, उनके साथ गर्मी सर्दी दिखा दी ससुराल वालों ने, मेरी बेटी के बाप भी और भाई भी है। कोई किसी का कुछ बिगाड़ और सवाल नहीं सकते, इसी कायनात में खुदा खास्ता भाई बहनों को भेज भी देते हैं। इसी तारीख के सीन पर उठाकर देखे ऐसे ऐसे वाकया जो दो तीन साल पहले कराची में शाहरुख और शाहजेब का हुआ था मर्डर केस, भाइयों के साथ होते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है। सूरह मुबारक नूर, अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। हम चाहते हैं हमारी बेटियां, हम चाहते हैं हमारी बहनें, हम चाहते हैं हमारी अपनी जात, हमारा नामोस हिफाजत में रहे। इस पुराशोर जमाने में कौन सी माँ ऐसी है जो नहीं डरती इस चीज से, अजीजा नेमन कोई माँ ऐसी है जो कहे नहीं? हम कहते हैं भाई जब तक लेने नहीं है कोचिंग से बाहर नहीं निकलना, जमाना बहुत खराब है। अच्छा आज खराब हुआ है, 100 साल पहले ठीक था, 1200 साल पहले ठीक था, 1000 साल पहले, जमाना तो शुरू से पैदाइशी खराब चला रहे, जमाने में और आजकल के बच्चों में कोई फर्क नहीं, पैदाइशी खराब चले आ रहे। लेकिन खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता किसी के साथ मिसहैप होना हो, इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन था? मैं देखे बाबरी मस्जिद के ना साल मेंशन नहीं किया, डर गई मैं अपनी मेमोरी से। जब मुहाफिज कत्ल करने वाले बन जाए। हमारे साथ आगे की राशि कहा करते थे कि जिस जमाने में इराक ईरान के इनकलाब का बड़ा इश्यू चल रहा था, आगे गुलपाई वाले हर रोज हरम नमाज के लिए जाते थे, कहते मैं बहुत बेतकल्लू, बहुत मुंह फट, बहुत उनकी खिदमत में करीब था। मैंने एक दिन आगा से जाके कहा आगे चार गार्ड रख ली। आगा ने कहा क्यों? कहा आप इनकलाब इस्लामी के पिलर हैं। ऐसे डायलॉग जुमले जो छोटे मौलवी बड़े मौलाना उसको बोलते, और आप इस तरह से घर से निकल जाते हैं, खुदा ना खासा आपको शूट एंड किल वाला सीन हो गया तो क्या होगा। कहा मैं बड़ी देर बोलता रहा, आगा सुनते रहे, बोलता रहा सुनते रहे। कहा आखिर में उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, होता है ना एक सौ लोहार की एक सुनार की। कहा अगर जुमला भी क्या बड़ा, कुरान की बड़ी मारूफ आयत है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुज मुशय्यदा। तुम कहीं पर भी चले जाओ, बड़े बड़े पिलर्स के अंदर अपने आप को डाल लो, मौत तुम्हारे पीछे आ जाएगी। और ये क्या गारंटी है कि जो मुहाफिज है वो हिफाजत करेंगे, जिसकी हिफाजत का बेड़ा खुदा उठा ले फिर उसका कोई कुछ सवाल नहीं सकता। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है, इमाम सादिक फरमाते हैं, अगर कोई शख्स चाहता है उसके नामूस पर गजब ना है, उसकी फैमिली के किसी शख्स के साथ ऐसा कोई मिस, ऐसा से मुराद आप समझ रहे ना कैसा कह रही हूँ, ऐसा कोई मिसाइब ना हो, उसकी बेटियां उसकी बहन उसके घर का नामूस महफूज रहे, रोजाना सूरह नूर पढ़े। मैंने ये शुरू में इसलिए नहीं बताया कि सूरह नूर लंबी है, और मैंने पहले दिन प्रॉमिस किया था लंबा वजीफा नहीं बताऊंगी, तो इसलिए मैंने ऐसी जिमनी सी बात कर दी है कि इंसान अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को हिफाजत हिसार में देने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आगा फरमाते हैं जो कुदरत में शक किया जाता है, एक खालिसतन जनानी मिसाल दिया गया मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब अल-मीज़ान ने, उसी जनानी मिसाल को कोट करूं और मैं बहुत तेजी से मसाइब की तरफ चली जाऊं। कहा कि अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल सी मिसाल है, मिसाल थोड़े हौसले से सुनिएगा। कोई खातून है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, आपने कोई बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट अपॉइंट की हुई है, वो आए और आप उस मरहले से उस जिम्मेदारी से फारिग हो जाए, थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, वो डॉक्टर नहीं आ पाती, ऑन कॉल दूसरी डॉक्टर को बुला लिया जाता है, बिलाखिर हॉस्पिटल में भी तो घास खाने वाले नहीं बैठते ना। मैंने कल मुहावरा सुना, लोग लेट कर ही सोते हैं, खड़े होकर तो कोई नहीं सोता ना। हॉस्पिटल वाले दूसरी डॉक्टर बुला ली, वो आई बहुत अच्छी तरह के सारी काम उमूर सब फारिग हो गए। उसके बाद हम कहते हैं अगर उस दिन वो डॉक्टर ना आती तो मेरे बच्चे की जान ना बचती। आगे तबातबाई कहते हैं शिर्क। अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब अल-मीज़ान कहते हैं इस जुमले के ऊपर आकर, और मुर्तजा अस्करी ने भी ये जुमला कहा है, शेख मुर्तजा अस्करी ने जबले आमिर के और लुबनान के एक स्कॉलर है, वो भी कहते हैं शिर्क है। अच्छा मैं आपको इससे हटकर एक मिसाल खुद बनाकर देती हूँ, अगर ये मेरी जॉब की दो साल पहले सेटिंग ना करते तो आज मेरे घर में पाके होते। ये बड़ा ये दूसरी मिसाल है, वो डॉक्टर वाली मिसाल तो अल्लाह का शुक्र है सारे टाइम पर काम हो जाते हैं, अल्लाह जिसके संवारना चाहे। अल्लाह ने सद्दात को पाला था, कैसे सेहरा में पाल दिया, हिरनी से कहा के दूध पिला दे, जानवरों से कहा देखो इसे बोला, खुदा किसी का जिम्मा ले ले। आप जॉब ना दिलवाते, आप मेरी बच्ची का रिश्ता ना करवाते, आप मुझे घर ढूंढ के ना देते, आप ये काम ना करते। आगे तबातबाई कहते हैं ये शिर्क है। अच्छा जब ये बात दरमहज़र उस्ताद में कह रहे हैं, शागिर्द बिलबिला उठे, जैसे मेरा मजमा नीचे से चीम अचीम हो रहा कि ये बात जब हम कहते हैं जुमला सुन के हम कहते हैं, हम तो ऐसे जुमले बोलते हैं हमारा तो शिर्क का इरादा ही नहीं होता, कायनात मेरे और आपके इरादे की मोहताज नहीं अजीजा ने, मैं किसी के ऊपर से किसी को गाड़ी से कुछ अर्जुन बाद में को मेरा तो इरादा नहीं था, आपके घर में पुलिस वाले की बाजी अच्छा आपका इरादा नहीं था, सॉरी आप वापिस चली जाएंगे। मैं किसी के बच्चे को चुटकी बर्दों को मेरे घर में मैंने आपको कुछ अर दिया, आपके घर में सामने वाला बिलाएगा नहीं, कायनात मेरे और आपके इरादे की मोहताज नहीं है, हमारा तो ऐसा जहन ही नहीं था अजीजा ने मन, जहन तो हमारा कहीं और टिका हुआ। मैं आखिरी मजलिस में बताऊंगी औरतों का जहन कहाँ टिका होता है, कुछ पासवर्ड हासिल करने के चक्कर में कैसे रहती है बेचारी, और कैसे कैसे गूगल पे तरीके बताए जाते हैं उन पासवर्ड्स को, और स्पेशली जो टच वाला चक्कर चलाए ना आईफोन वालों ने, खुदा ने पूछे इन माइक्रोसॉफ्ट वालों को अल्लाह पूछे, और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है जैसी ऐसी चीजें बना देती है, आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ये खुलने वाला नहीं है, हमारा जहन उसमें से निकले तो हम सोचे ना हम क्या कह रहे हैं। यकीन करें भाभी आपका बड़ा एहसान है, आपने मुझे ये हीरा सिफत बहुत ढूंढ के अजीजा ने मन, अगर खुदा ना चाहता मैंने उस दिन हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हुदहुद की मिसाल दी थी आपकी खिदमत में, कि सुलेमान बिन दाऊद जब तैयार हुए हैं, लश्कर तैयार हुआ है, सुलेमान बिन दाऊद हुदहुद के बगैर हिलते नहीं थे। किस्सा से उलमा, किस्सा से अंबिया, मुस्तफा जमाने की हिकायतुल कुरान मोहम्मद सोहफी की और अल्लामा मजलिसी इलाही रामा की हयातुल कुलूब और ऐसी सारी किताबें उठाकर देख ले। जब सफर पे निकलते थे हुदहुद को लेकर आया जाता था, क्यों हुदहुद को बुलाया जाता था? जब इमाम इनायात की तफसीर कर रहे छठे इमाम, तो इमाम कहते हैं, रावी कहते हैं, मौला हुदहुद क्यों, दूसरे परिंदे क्यों नहीं? तो इमाम फरमाते हैं, हुदहुद जमीन की तहों के अंदर ऐसे ही पानी को देख लेता है जैसे मैं और तुम बलोर के ग्लास में देखते हैं, ट्रांसपेरेंट बर्तन में। रावी भी बेचारा बड़ा इंटेलेक्चुअल ज़हीन, शार्प माइंडेड स्मार्ट बच्चा था, कहने लगा यम नरसुल्लाह मेरा आपसे सवाल है। अल्लाह के वली खामोश हो गए, क्या सवाल है? तो आपने कहा हुदहुद को जमीन की सात तह में पानी ऐसे नजर आता है जैसे मुझे और आपको बलोर के ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के बर्तन में नजर आता है। ये हुदहुद फंसा लिया जाता है, शिकारी दाने डालते हैं, जाल बिछाते हैं, वो हुदहुद जिसकी आंखें इतनी तेज हैं, जमीन की सात तह में पानी देख रही हैं, जमीन के ऊपर बिछा हुआ सयाद का जाल नजर नहीं आता। और सवाल बिल्कुल मंतकी है, यकीन रसूलुल्लाह ने कहा उसकी आंखें बड़ी शार्प है, इसलिए सुलेमान बिन दाऊद ढूंढ रहे थे। और शार्पनेस के साथ आपने रीजन भी बताया कि अपनेस ये है कि जमीन की सात तहों में से पानी नजर आ जाता है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब नरसुल्लाह इसे जमीन के ऊपर बिछा हुआ सयाद का जाल नजर क्यों नहीं आता? इमाम सादिक ने कहा, नजर तो वो भी आ जाए लेकिन कजा और कदर गाफिल कर देती है। इंसान जब अपनी तदबीर पर भरोसा करता ऊपर बैठी हुई तकदीर हंस रही होती है। लेकिन अब ये जुमला अगर फर्ज करें मैं ऐसे जुमले कहने के आती हूँ, खुदा न खास्ता वो ना होता तो मर गए। अक्सर ऐसे बीवियां मोहब्बत में छोड़ों को भी ऐसे जुमले बोलती हैं और जब लड़ाई आती है वो सारे जुमले कुकर की हवा की तरह निकल जाते हैं, भूल पाल जाती है। ऐसी अच्छी बीवियों को चाहिए रिकॉर्ड करके अपने जुमले खुद गाए बुलाए सुनती रहे कि अच्छा मैंने किसी जमाने में आपको ये भी कहा था, और बेचारे शौहर भी कहीं भूले भटके आवाज पड़ गई ना, जैसे शादी की 25 साल पुरानी तस्वीरें देख के बच्चे पूछते हैं, डैडी ये आंटी कौन है जो आपके साथ बैठी है? डैडी भी सारे आह भर के कहते बेटा तुम्हारी माँ है। तो ऐसे कुछ जुमले हम ये जुमले बोलते हैं, मौलाना हिजुल बलागा में फरमाते हैं जुमला मुंह से निकलता है निकमत को लाता है, मुसीबत को लाता है, नेमत को दूर कर देता है। अलावा तबा तबाई से भी शागिर्द वही इमाम सादिक के साहबी की तरह सवाल करता है, कहा हम तो ये जुमले बहुत दफा बोलते हैं, तो कहा ये जुमला मत बोलो। कहा क्या बोले, बोलना तो है ना हमने कुछ ना कुछ। कहा क्या बोले? कहो खुदा का एहसान, उसने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया, वो मुसब्बबुल असबाब है, वो इन असबाब का मोहताज नहीं है। आपके ख्याल में कायनात में खुदा ना सा किसी का बाप मर जाता है उसके घर में फाके आ जाते हैं? अल्लाह ने किसी को फाके कराने हो बाप भूल जाते हैं पैदा करके। अल्लाह ने किसी को रोना हो, छोटे छोटे बच्चों की मां मर जाती तो हमारे माशरे में कहा जाता है बच्चे रुल जाएंगे। और मैं और आप कम अज कम दिन में 10 मरतबा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कायनात को पालने वाला है। और जब वो पालने का जिम्मा अपनी गर्दन पर ले रहा है तो वो पालेगा, ये सब असबाब है। बहुत दफा इंसान चार माओ के होते भी सही तरह से नहीं पल पाता और खुदा नास्ता किसी की माँ कमसीने में मरती है, बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। असल जात अल्लाह की जात थी, इसीलिए इंसान से इतना सोच रहे। वो मुखबिर सादिक कहता है हल फी ज़ालिका कसम अल्लज़ी हिज्र, अकलमंद के वास्ते बहुत बड़ी कसम है। आखिरी जुमला कुरान के आयत पर मैं मसाइल की मंजिल में चली जाऊं, परवरदिगार कहते हैं अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिआद। इस सूरे के अंदर 30 आयतों पर मुश्तमिल इस सूरे के अंदर खुदा के पास एक बेसिक एम है। अब वो बेसिक एम स्टार्ट कर रहा है, पहली 4 आयतों में मुसलसल कस्बे खाता है, 5वीं आयत में परवरदिगार कहते हैं कस्बे खाना बेकार नहीं है, हम कसम खा रहे हैं, हमारे पास रीजन है कसम खाने का, हम साहिबान शऊर को समझाना चाहते हैं। अलम तारा कई बार रब्बू का ब्याज, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, कौम आद और समूद के साथ? अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब अल निजाम बहुत ही वाक़ई तशय्यु में ऐसी तफसीर लिखी नहीं गई। उलमा अहले सुन्नत कहते हैं 200 साल चाहिए इस तफसीर को समझने के लिए, ऐसी नफीस तफसीर है। आ गए मोहम्मद हुसैन अल निजाम के अंदर, अल्लामा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी नमूना के अंदर, और हमारे बाकी दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं परवरदिगार बता रहे थे कि देखो जितना बड़ा अपने आप को समझोगे हमें नीचे गिराना आता है, और जब गिराने पर किसी को आ जाए गिराने पर किसी को आ जाए। मैं मसाइल की नजर में जाने से पहले एक जुमला कहूँ, बड़े बड़ों को बहुत बदतरीन तरीके से गिराए। अगर आपने कयाम मुख्तार सुना है, खुदा अज़्ज़ा वज़ल के सामने जो खड़े थे, जो जिन्होंने सैयदुल शुहदा के साथ, क्योंकि अल्लामा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी नमूना में कहते हैं कि ये जो है ना वल फज्र व लयाली नशर, ये फज्र से मुराद शायद कयाम खुद सैयदुल शुहदा है जो करबला के मैदान में उन्होंने किया। शिमर जैसों को, खूली जैसों को, उम्र साथ जैसों को कहां कहां से निकाला है मुख्तार ने। कभी कभी सोचिए मुख्तार की एफर्ट कैसी है। तारीख में अजीब जुमले आ गए। बुलफजल अर्दकाने की बहुत प्यारी किताब है कयाम मुख्तार, खैर उसका हजम मुफाती जितना ही, देख कर ही बंदे का दिल घबरा जाए कि उसे पढ़ेगा कौन 800 सफों की किताब, 600 सफों की किताब। आगे बुलफजल अर्दकाने कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को लिखवाया है तारीख में मुख्तार ने, एहसान हम पर मुख्तार का, कि जब किसी ने आकर कहा कि लाया गया है कोई शख्स वाकई करबला के उसरा में से, पहला सवाल होता था तुमने किया क्या है, तुमने किया क्या है। आने वाला एक शख्स ऐसे ही आया, आगे अर्दकाने किताब में लिखते, आकर खड़ा हुआ, कहा क्या किया था तुमने। कहा अमीर मैं बुनियादी तौर पे एक बुजदिल आदमी हूं, उम्र साथ भी नफरी बढ़ाई थी, सारे बहादुर नहीं थे उसके पास भी, ट्रेन आर्मी नहीं थी उसकी भी कोई, उसने भी कूफे से हर आदमी को पकड़ा, दबोचा और डाल दिया कि नहीं चाहोगे तो हम जान माल और नामूस का नुकसान पहुंचाएंगे। इन 30,000 यानी बिनाए करबला की रिवायत देख लें, 30,000 अफराद है सैयद शुहदा के मुकाबले में। शेख मुस्तफा मुतहरी की मसले मुतहर की रिवायत देख लें, 30,000 अफराद है सामने सैयद शुहदा के। इधर कितने लोग हैं, शेख इंसानियत मरहूम नक्कल, मेरी जान को पान हो जाए बरे सगीर पाक हिंद के नाम पर सितारे पर, कहते हैं 150, और फिर रीजन देते हैं, वन टैंग के नाम शुहदा है करबला में, गंजे शहीदा पे लिखे 110 नाम, सैयद शुहदा इनमें नहीं है, हजरत अब्बास इनमें नहीं है, जनाब अली अकबर इनमें नहीं है, जनाब अली असगर इनमें नहीं है, हुर इनमें नहीं, हबीब इनमें नहीं, औला मोहम्मद इनमें नहीं, और उधर वो 30,000 मलऊन। मजे की बात है, एक ही दिन के असर में बहुत सो का अंजाम, फाइलें क्लोज हो गई, कुछ दावत ऐसे हो गए कि हम मजलिस मुकम्मल नहीं करते जब तक नहीं कहते सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन, और कुछ ऐसे थे जिन पर लानत भेजी जाती है ज़ियारत आशूरा में 100 दफा। कहा तुमने क्या किया था, कहा अमीर मैं तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही चला गया था इनके साथ लालच में कि आखिर में कुछ लूटेगा, कुछ ना कुछ तो मुझे भी मिल जाएगा ना। कहा कुछ तो किया होगा, छोटा सा कुछ छोटा सा, क्योंकि डरते थे, इनको पता था गवाहियां जमा कर देगा मुख्तार। खैर मुकौल मौलाना ज़की बाकरी के जिन्होंने कहा मैं मुख्तार देख लिया, वो हमारी मजलिसों के मुख्तार नहीं रहे, मैंने अभी तक देखी नहीं है इसलिए मैं मुख्तार हूँ इस मजलिस की। कहा उन्हें डर था कि गवाहियां जमा कर देंगे मुख्तार। कहा मसला बताओ किया क्या है। कहा कुछ नहीं, मेरे पास तो कोई तलवार वगैरह भी नहीं थी, मैं तो बस एक छोटा सा खंजर लेकर घर से चला गया था कूफा से। कहा फिर, कहा मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कहा फिर, कहा कि जब रात की तारीकी छा गई सहराए करबला में, उम्र सादे मलून ने कुछ लाशों को गुस्ल दिया था फुरात से, उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लाशें हैं जिन पर घोड़े दौड़ाने का इंतजाम किया जा रहा है। कहा मैंने देखा इन लाशों के अंदर कोई चीज है, कोई दुर है, कोई गोहर है जो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। कहा मैं उन लाशों के करीब अंधेरे में, सन्नाटे में, रात की तारीकी में पहुंचा। जब मैं लाश के करीब पहुंचा तो मैंने देखा ये लाश हुसैन मजलूम की लाश है। मुझे मसाइब हबीब के पढ़ने हैं लेकिन एक जुमला यहां तक आ गया तो आपकी समातों की नजर कर दूंगा। ये लाश हुसैन मजलूम की लाश है। मुख्तार ने बेकरारी से कहा जो चीज चमक रही थी वो क्या था। कहा अंगुश्तर का नगीन, हुसैन के अंगूठी में एक गुहर था, वो ग्लो कर रहा था रात की तारीखी। कहा अमीर मैंने आगे बढ़कर अंगूठी उतारना चाहिए, मुझे सास में बड़ी कीमती अंगूठी है, बहुत एक्सपेंसिव किस्म की अंगूठी, बहुत खूबसूरत अंगूठी है। मैंने लालच में मालिक नियमत कुछ तो चाहिए ना, मैं वापिस जाऊंगा, मैंने अंगूठी निकालना चाहिए। बदन नाजनी जख्मों की कसरत से सूज चुका था, स्वेट कर रही थी बॉडी से दुशौदा की। कहा मैंने खींचना चाहा और सही की अंगूठी से नहीं खींच पाया। मुख्तार मुस्तरिब होकर टहलने लगे। कहा फिर बताओ तुमने क्या किया। कहा मीर आगे आप सुन नहीं पाएंगे। मुख्तार ने कहा मैं सुनना चाहता हूँ फिर तुमने क्या किया। कहा मैं जब तक कोशिश करता रहा निकाल लूं नहीं निकाल पाया, आखिरकार मेरी पेटी में खंजर था, मैंने हुसैन को उंगली काट दी, अंगूठी निकाल ली। करबला ने इतनी मस्ती दिखाई उमर साहब के सिपाही ने, अजीजा ने मन कभी कभी सोचो सैयद शौदा आपने सब्र की इंतहा कर दी, कमाल तक पहुंचा दिया, कायनात को बता दिया कोई हुसैन जैसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो कोई हुसैन जैसा। आइम्मा में अली का नाम चार दफा दोहराया जाता है, हसन का नाम दोहराया जाता है, पैगंबर का इस्म गिरामी दोहराया जाता है, लफ्ज हुसैन नासिर खत्म रसूल कुव्वत यज़दान के सफीर, तूने बढ़ते हुए तूफान का रुख मोड़ दिया, दस्ते हक ने तेरी तस्वीर बनाई जिससे उसे कुछ न बनाया, मोखलन तोड़ दिया, दोबारा हुसैन नहीं बनाया खुदा ने, ना हुसैन बनाया ना असारे हुसैन बनाए। उन असारे हुसैन में से मुझे हबीब इब्ने मदाहिर का तस्किरा करना, लेकिन हबीब से पहले तबर्रुक। मेरी नॉर्मली अपना भी एक मिजाज है कि मुझे जब पेपर दिया जाता है मैं उसको फॉलो करती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं हबीब के मसाइल पढ़ती हूँ ना मैं तीन या चार जुमले जुहैर के लिए जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि जुहैर की शख्सियत के अंदर हमारी नस्ल के लिए आने वाले बच्चों के लिए बहुत अजीब सा पैगाम छुपा हो। तबर्रुकन तीन या चार मिनट जुहैर का तस्किरा सुन लो। उस्मानी अकीदे के हैं, खलीफा सालिस के चाहने वाले हैं, खुद जुहैर के अल्फाज से तारीख के सीने पर नकल कि मैंने और हुसैन ने मक्का एक साथ छोड़ा था, मुझे पता चल गया था रास्ते में हुसैन नासिर जमा कर रहे हैं, मेरे दिल में हुसैन के लिए घृणा था, कदूरत थी, नफरत थी, दुश्मनी थी, मैं हुसैन और हुसैन के बाप को हक़ पर नहीं समझता था, कहा लिखने के एहतराम भी था, फरजंदे पैगंबर है, इसलिए हुसैन जहां पर रुकते थे हमारे खैमे आगे बढ़ जाते थे, और जहां पर हुसैन के खैमे नहीं ठहरते थे हम अपने खैमे लगा देते थे। कहा लेकिन एक जगह चश्मे आपकी वजह से हम मजबूर हो गए, हुसैन के खैमे देखे, मैंने अपने काफले को रोक दिया क्योंकि हमारे पास कोई पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं था। कहा मैं आया हूँ, बैठा हूँ दस्तरखान पर, खैमे के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरी बीवी थी इस काफले में, मेरे साथ मेरी बीवी का भाई था इस काफले में, मेरे साथ मेरा जाती गुलाम था इस काफले में। कहा जैसे ही बैठा हूँ दरवाजे पर, दरे खैमा पर, देखे वो खैमे टेंट से ना, कोई दरवाजा नहीं है, कोई बैल नहीं है। कहा कासिद बाहर आकर कहते अजी बाबा अब्दुल्ला, मैं खामोश हो गया। तारीख ने मिसाली खवातीन बाय डॉक्टर अहमद भिश्ती, रियाहीन शरिया बाय जमीउल्लाह मोहल्लाती, इस शख्स की, इस मोमिन की, इस बंदे खुदा की साहबी सैयद शौदा की बीवी का नाम दिलहम नकल किया। दिलहम सामने बैठी बीवी के साथ बैठा हुआ दस्तरखान पर, जब उसने कहा ना अजीब बाबा अब्दुल्ला, इसके मानी है कि हुसैन बुला रहे, उनकी बात का जाकर जवाब दो। कहा मैंने चेहरे पर इकरा के तासुरा दे दिए, मैं नहीं उठना, मैंने नहीं जाना हुसैन की बात सुनने। कहा कासिद ने जोरदार थोड़ा सा लाउडली कहा, या जुहैर अजीब बाबा अब्दुल्ला, जुहैर हुसैन बुलाते, उनकी बात का जवाब तो दो। कहा दिलहम ने मुझे एक जुमला कहा था, देखो हुसैन के अंदर बहुत ईगो है, वो तुम्हें जबरदस्ती कभी नहीं रोकेंगे, जुहैर हम खानदान पैगंबर को सालों से जानते हैं, तुम इतना हिम्मत करो उठो जाकर बात सुन लो, मना कर देना, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। कहा मुझे भी बात समझ में आई कि हुसैन के अंदर ईगो बहुत है, शख्सियत बुलंद है। मैं उठा, अब रावी और मख्तल जुमले देखिएगा आप और जुमलों का चुनाव देखिएगा। कहा मरे हुए कदमों से जुहैर हुसैन के खैमे में गए, सैयद शौदा में और जुहैर में क्या डायलॉग, क्या कन्वर्सेशन, क्या मुकाबले थे, तारीख एकदम क्वाइट साइलेंट है, कुछ नहीं कहा तारीख ने, कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा है तारीख में जब खैमे सैयद शौदा से निकल कर आए हैं, एक नौ ब्याहता दुल्हा की सी सरशारी थी खैमे में आए, बेगम से कहा जल्दी से वाइंड अप करो, दिलहम ने कहा क्या, कहा तुम इस काफले के अंदर तुम्हारा भाई भी है गुलाम भी है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम कूफे चले जाओ, मैं हुसैन का साथ दूंगा। दिलहम ने कहा क्यों, कहा बस मेरा दिल चाह रहा है मैं हुसैन का साथ दूंगा, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। दिलहम ने जुमला कहा जो बीवियों की खसलत होती है, कहा जुहैर देखिए हमारा जिंदगी भर का साथ था, आप अगर हुसैन का साथ देंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जुहैर ने कहा नहीं दिलहम, कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, भाई और गुलाम को पकड़ो, कूफे के अंदर मेरा इतना माल और बात है कि तुम आने वाली जिंदगी बहुत पुरसकून तरीके से गुजार सकती हो, चुपचाप कूफे चली जाओ। दिलहम ने जिद पर आके ना, औरतों की जिद ऐसी होती, कहा नहीं मैं जाऊंगी। जुहैर ने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। दिलहम ने कहा नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जुहैर ने अब जुहैर से
इससे ज्यादा बहस बर्दाश्त नहीं हुई। जुलैम ने कहा दिलम तुम अरब औरत हो, तुम जानती हो अरबों का मिजाज? दिलम ने कहा हाँ जानती हो अरबों का मिजाज। अरबों का मिजाज ये कि जब इंतकाम लेने पर उतर आते हैं मर्दों को तहे तेज कर लिया जाता है और औरतों को असीर बना लिया जाता है। मैं हुसैन के साथ ये कुर्बानी देने पर तैयार हूँ, मैं मर जाऊं, मैं कट जाऊं, मेरा खून बह जाए, लेकिन तुम तो मेरा नामूस हो। दिलम ने ये जुमला कहा, दोनों भी अभी भी आराम से जमीन पर बैठ के सुकून से बात कर रहे हैं, शेख मुर्तजा मदनी के अल्फाज। तुम मेरा नामूस हो। ये जुमला सुनने के फौरन पर दिलम ने क्या कहा, हुसैन के साथ भी तो जैनब अपने गुलशन में है। तारीख ऐसी खड़े हो गए, गजब के आलम में टहलने लगे। जो है दिलम से कहते हैं वो रसूल की बेटियां हैं, किसी की नजर उनकी तरफ नहीं उठेगी, किसी का हाथ उनकी तरफ नहीं बढ़ेगा, उन्हें शायद बहुत एहतराम से मदीने वापस भिजवा दिया जाए। लेकिन जुहैर दिलम तुम्हारा जुहैर मर गया ना, कर्बला की सरजमीन पर क्यों नहीं रह जाओगे? खामोश हो गए। समझ में आ गई बात, वो रसूल की बेटियां हैं, कौन उनको देखेगा, रसूल की नवासी है, किसका हाथ उनकी तरफ बढ़ेगा, वो हया मुहद्दरात इस्मत और तहारत की होंगी, उन बीवियों की खेमों की तरफ कोई निगाह नहीं करेगा। मेरा जुहैर मर गया, कर्बला में मेरे पर्दे का मुहाफिज नहीं बचेगा। सामान सबक सबर लिया, भाई और गुलाम के साथ कूफा चली गई। जब कूफा की सरजमीन पर पहुंची ना, बीवी की मोहब्बत का तकाजा क्या था, शोहर ने इतनी मोहब्बत लाड़ से रखा था, 12 मुहर्रम से पहले कूफा में ये खबर पहुंच गई कि हुसैन सरजमीन ने कर्बला पर कत्ल कर दिए गए हैं, अंसार और कर्बला को तह तह कर दिया गया है। इसके साथ जो जुहैर का गुलाम था उसे बुलाया घर के अंदर। जब गुलाम पहुंचा, दिलम एक बड़ा अजीब जुमला था, तारीख में बात जुमले बहुत अजीब है अजीम औरतों के। कहा गुलाम मुझे पता चल गया कूफे में हुसैन कर्बला में शहीद कर दिए गए, मुझे ये भी खबर मिली है कासिम उनके साथ थे, उन्होंने मोहम्मद था थे, अकबर साथ थे, अब्बास साथ थे, और मुझे ये भी पता चल गया है कि बीबियों को असीर बनाकर कूफे लाया जा रहा है। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम कहती हूँ, तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हें राय खुदा में आजाद कर दूंगी। गुलाम ने आजादी का लफ्ज सुना, बड़ी एक्साइटमेंट से कहते हैं मालिक ना आप हुक्म करें। घर के अंदर से एक कफन लेकर आई, गुलाम के हाथ पर कफन रखकर कहा, कर्बला की सरजमीन पर हुसैन को दफनाने वाले बहुत हो गए, अकबर शबीहे पैगंबर है, मुसलमानों ने गुस्ल दिया होगा, कफन पहनाया होगा, कर्बला की सरजमीन पर दफन कर दिया होगा, अब्बास में तो लोगों को कहीं की शराहत नजर आती है, दुनियाल दजियाल अब्बास का बहुत बड़ा है। गुलाम शोहदा के निवासियों को दफनाने के लिए तो मुसलमान एक जगह खड़े हो गए होंगे, लेकिन जुहैर ने सारी जिंदगी मुझे मोहब्बत से रखा, मेरे जुहैर का सरजमीन कर्बला पर कोई वाली वारिस नहीं होगा, मेरा सिर्फ इतना सा काम कर दे, ये कफन लेकर कूफे से जा, तेज रफ्तार घोड़े पर कर्बला पहुंच के मेरे जुहैर की लाश को गुस्ल देना, कफन पहनाना, दफन करके पलटना, तुम मुझे जुहैर के गुस्ल कफन की खबर दे दोगे, मैं राह खुदा में आजाद कर दूंगी। गुलाम ने बड़ी तेजी से कफन लिया, एक घोड़े पर बैठा कर्बला पहुंचा, कर्बला पहुंचा, अब ये घर में इंतजार कर रही है, गुलाम पहुंच गया होगा, जुहैर को गुस्ल दे दिया होगा, कफन पहना दिया हो गया होगा, दफन कर दिया गया होगा, घर के पाला खाने पर जी दूर से देखा गुलाम आ रहा है, दो तीन सीढ़ियां नीचे उतरी, हिजाब सर पे रखकर गुलाम का इस्तकबाल किया और कहना चाहती मेरे जुहैर की लाश को गुस्ल कफन दे दिया, लेकिन देखा गुलाम के हाथों पर कफन मौजूद है, तड़प कर कहती है भाई हो तुझ पर, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, मेरे वाली की लाश अभी तक बेगौर कफन पड़ी है। झुके हुए सर के साथ गुलाम ने जुमला कहा, दिलम जब कफन लिया था तो कहा था सरजमीन कर्बला पर एक लाश होगा, मैं कर्बला की सरजमीन पर पहुंच गया, एक तरफ हुसैन, एक तरफ जुहैर, एक तरफ अब्बास, एक तरफ जुहैर, एक तरफ ओनो मोहम्मद, एक तरफ जुहैर, एक तरफ अखबार, एक तरफ जुहैर, मेरे बस का काम नहीं, ये कफन ले लो, तुम जानो तुम्हारा जुहैर जाने। कैसी कुर्बानियां दी है हुसैन आपके नाम पर, अब दो जुमले अमीर के लिए सुन दीजिए। हुसैन की बहन ने इंतजार किया है अमीर काजी जाने पर, जब खत लिखा है सैयद शहदा ने, सैयद शहदा ने कहा हबीब हम दरगाह आदा में गिर गए, हो सके फरजंद रसूल की मदद करो, मैं कुर्बान हो जाऊं तारीख के इस खत पर जो हुसैन ने अपने हाथों से लिखा, इदारो جان بھجوایا زمین پر بیٹھ کے خاکے کربلا چہرے پر ڈالنا شروع کر دی. تو پروردگار حبیب کی زندگی میں یہ دن آنا تھا جن کی بیٹیاں ہم غلاموں کو سلام بھجواتی ہیں. میں مولا سے تو مولا ایسے انصار جمع کر دیے کربلا کے میدان میں جنہوں نے جانیں قربان کر دی لیکن حسین مظلوم برداشت نہیں ہونے دی. وہ سیعلم الذین ظلموا ایام قلب انجن قلب نسلک اللہ ندوک بسمک اللہ العظیم العظم اللہ جل جلیل اکرم.